मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 सितंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने अक्टूबर नवंबर और मार्च 2019 के बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, एडमिशन कराया है। इनमें से दो नौजवान साथियों ने अक्टूबर बैच के लिए एडमिशन लिया है और दो नौजवान साथी मार्च 2019 के बैच में आएंगे। तो पहले मैं अक्टूबर के साथियों के नाम आपको बता देता हूं। इनके नाम है मुजीबुर रहमान, आपका गांव है लिलजा, जिला सहरसा, सहसराम या सहससा लिखा हुआ है मित्रों, जो भी सही नाम हो माफी चाहूंगा, बिहार से हैं। और अन्नपूर्णा गौर, आपका गांव है चौकड़ी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश से। तो मुजीबुर रहमान और अन्नपूर्णा आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने इन दो नौजवान मित्रों का भी एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से जिन्होंने मार्च 2019 के बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनके नाम हैं रणजीत कुमार, आपका गांव है मूरतगंज, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। और अनुपम मिश्र, आपका गांव है पिपरौंद, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। तो रणजीत और अनुपम आप दोनों नौजवान साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। कल मुझे कुछ मेल मिले हैं जिसमें आप में से कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि सर ये जो अक्टूबर का बैच चल रहा है जिसके लिए अभी एडमिशन हो रहे हैं इसमें से कितनी सीटें बाकी हैं। मित्रों बस आप ये मान करके चलिए कि अभी एडमिशन ओपन है, अभी आपको किसी भी तरह से इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि सीट्स भी बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। इनफैक्ट जब भी सीट्स खत्म होंगी डेफिनेटली उसकी सूचना दी जाएगी। तो आप ये मान करके चलिए कि जब तक मैं डेली ऑडियो लेक्चर के जरिए आपको इस बारे में सूचित नहीं करता हूं तब तक अक्टूबर के बैच के लिए अभी एडमिशन ओपन रहेंगे। लेकिन मेरी सलाह है कि यदि आप सचमुच में अक्टूबर नवंबर के बैच में आना चाह रहे हैं तो फिर शुभ काम के लिए देरी नहीं करना चाहिए। आप जितनी जल्दी करा लेंगे आप उतने अधिक सुरक्षित रहेंगे, वह चीज आपके उतने ही अधिक फेवर में रहेगी। मित्रों आइए अब हम न्यूज के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मुख्य विषय के बारे में आज का जो मेरा विषय होगा वो होगा वोस्टोक 2018। चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी दो न्यूज के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। फ्रेंड्स एक आपने न्यूज में सुनी होगी और डीडी न्यूज में भी इसकी चर्चा थी कि जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है खासकर जम्मू कश्मीर की तरफ उसमें स्मार्ट फेंसिंग परियोजना शुरू की गई है। स्मार्ट फेंसिंग परियोजना और इसका उद्घाटन कल हमारे गृह मंत्री जी ने किया है। ये 11 किलोमीटर पहली लंबी फेंसिंग योजना होगी और बाद में फिर जो 2000 किलोमीटर जो सीमा रेखा है उस पर वो आधुनिक बाड़ आप कह लीजिए वो बनाई जाएगी। बेसिकली इसे स्मार्ट फेंसिंग इसलिए किया गया कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया गया। इसमें सेंसर्स भी लगे हैं, ग्राउंड राडार भी हैं, थर्मल इमेजर भी है, लेजर आदि भी है। तो इस पूरे के पूरे बाड़ में इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी तो जो घुसपैठिए होते हैं वो आसानी से इसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे। आपको मालूम है कि बॉर्डर में कितनी झड़प होती रहती है। इसके बावजूद बकायदे जो आतंकवादी हैं या जो कह लीजिए तस्करी करने वाले हैं वो किसी न किसी तरीके से घुस ही जाते हैं। और ये केवल भारत और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर वाली सीमा में नहीं हो रहा है बल्कि आप देखिए कि अब जो आप नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजन रजिस्ट्रार का मामला असम में आप देख रहे हैं, नागरिकता रजिस्टर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, तो वहां बांग्लादेश से घुसपैठिए बकायदे इधर पश्चिम बंगाल वगैरह में घुस रहे हैं। फिर आप म्यांमार तरीके से तरफ से जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनकी भी समस्या से भारत जूझ रहा है। तो इनफैक्ट सच पूछिए तो जहां बिल्कुल ही मैदानी क्षेत्र है या जमीनी क्षेत्र है वहां सीमाओं की सुरक्षा एक थोड़ी सी चुनौती हो जाती है और खासकर तब तो और भी चुनौती मिल जाती है जब आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान आपके प्रति लगातार शत्रुता का भाव रख रहा हो और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा हो, तो उस लिहाज से इसे एक बहुत ही सही कदम माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो सीमा रेखाएं हमारी हैं वो इसी तरह के स्मार्ट फेंसिंग से लैस हो जाएंगी। ये न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है मैं ये भी आपको बता दूं। देखिए, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल भरपूर होना चाहिए, वो आपको एकदम रट जाना चाहिए। और दूसरी चीज की जो आपके अनसॉल्व्ड पेपर हैं वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि पिछले 3-4 सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो सुरक्षा है, आप देखिए कि बकायदे सुरक्षा का टॉपिक आपके सिलेबस में है, पहली बात। दूसरी बात, हर साल इस पर एक दो क्वेश्चन आए ही आए हैं और आएंगे ही। तो चूंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सीमा पर सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, तो स्वाभाविक है कि इसके बारे में आपको सतर्क रहना ही चाहिए ताकि जब आप कोई भी उत्तर लिखें तो इस नई घटना को या सरकार की नई योजना को, नई नीति को उसमें लिख सकें। जो दूसरी जो खबर है मित्रों, वह है 3 बैंकों के विलय के बारे में। कल अगर आपने डीडी न्यूज सुनी हो और देखी हो तो कल के डीडी न्यूज में जो बैंकों के विलय के बारे में बातचीत की गई है, शिशिर सिन्हा जी से बात की गई है और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने चीजें बताई हैं। मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ करूं शायद वो कम होगी। एक तो बहुत अच्छी उन्होंने हिंदी बोली, दूसरी बात कि हिंदी बोली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम अर्थशास्त्र जैसे विषय पर बात करते हैं तो हिंदी उतनी अच्छी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि ज्यादातर अर्थशास्त्र की जो पढ़ाई है देखिए कि अंग्रेजी में होती है या जो हिंदी के शब्द हैं वो इतने कठिन शब्द हो जाते हैं, आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके देख लीजिए कि पल्ले ही नहीं पड़ता है। लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से चीजों को समझाया और बड़े ग्राउंड लेवल पर जाकर के समझाया, मानो कि वो किसी बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को समझा रहे हैं कि ये विलय क्या होता है, एकीकरण क्या होता है, बैंकों का विलय करने से क्या फायदा होगा, सरकार के सामने अभी कौन सी चुनौतियां हैं। मतलब बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने समझाया है। तो मित्रों, मैं आपको समझाने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समझाने के लिए दूसरी बहुत सी चीजें हैं, बस मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर इसलिए महत्वपूर्ण भी है, आप देख रहे हैं कि बैंकों का एनपीए जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि मोटे तौर पर कह लीजिए वह पैसा जो बैंकों में शायद वापस नहीं आएगा, सोच के देखिए कि अब वह लगभग 14% के करीब पहुंच गया, यानी कि हमारे जो बैंक है वो बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं। तो फिलहाल जो विलय करने की जो नीति है उसके केंद्र में ये एनपीए ही है, ताकि बैंकों के घाटे को कम किया जा सके, उन्हें सक्षम बनाया जा सके और खुद सरकार भी ये सोच रही है कि नहीं, हमारे जैसे भी सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक बैंक करीब 21 है, तो सरकार भी सोच रही कि इतने सारे बैंकों की बजाय ज्यादा अच्छे कि 5-6 बड़े बैंक हों, विश्व स्तर के बैंक हों, तो ज्यादा अच्छे से काम हो सकेगा। तो इसीलिए विलय और एकीकरण इन सब की बातें अभी की जा रही हैं। और मैं चाहूंगा कि आप डीडी न्यूज को बकायदे, वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, उस पर जाकर के आप इस डिस्कशन को थोड़ा सा सुने, ये आपके सिविल सर्विस के इस टॉपिक की तैयारी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में आपको बता दूं। 2 क्लिपिंग्स बिजनेस स्टैंडर्ड की हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, प्लीज आप इन दोनों को देख लीजिएगा। एक का संबंध बागवानी से है कि बागवानी के क्षेत्र में किस तरह की सफलताएं मिल रही हैं, और दूसरे क्लिपिंग का संबंध है तो छोटा सा ही कि किस तरह से अगर हम जब तक ग्रामीण कृषि में युवाओं को नहीं जोड़ेंगे तब तक वहां बहुत वृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। तो एक नया फैक्ट है कि युवाओं को उससे जोड़ा जाए। एक आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि बंद करें तानाशाही का झूठा प्रलाप, जो योगेंद्र नारायण जी ने लिखा है। योगेंद्र नारायण जी यूपी कैडर के, जहां तक मैं समझता हूं कि आईएएस ऑफिसर रहे हैं, कैडर में भूल रहा हूं, आईएएस ऑफिसर तो रहे हैं। जब आप सरफेस ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हुआ करते थे तो कुछ समय तक मुझे इनके अंडर में काम करने का मौका मिला था, और दोस्तों बहुत ही गजब के व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षमता हो, चाहे उनका व्यवहार हो, चाहे उनकी मानवीयता हो, बहुत ही अद्भुत। मतलब इस तरह के अवसर बहुत कम मिलते हैं। इस तरह के अवसरों में मेरे दिमाग में 3 नाम अभी आ रहे हैं, जैसे योगेंद्र नारायण जी हैं, एक ओपी रावत जी हैं, जिनका मुझे बहुत स्नेह मिलता रहा है, जो अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और एक हमारे सेक्रेटरी खेल हुआ करते थे, मैं अभी नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं, तीन व्यक्ति मैं जानता हूं जो बहुत ही अद्भुत और भी बहुत अद्भुत रहे हैं, लेकिन तुरंत मेरे दिमाग में ये तीन नाम आ रहे हैं। खैर मित्रों, तो ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा, एक आपको पॉलिटी के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी एक नई धारणा देगा, राइट। और बाकी जो दूसरे आर्टिकल्स हैं आप सब अपने ढंग से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वह है वोस्टोक 2018। बेसिकली ये जो वोस्टोक 2018 है, याद रखे, ये रूस और जो चीन है उनका संयुक्त सैनिक अभ्यास है, जो पूर्वी साइबेरिया रूस में है, वहां किया गया है। और इसको दुनिया बहुत ही आशंकित होकर के देख रही है, और खासकर इस सैन्य अभ्यास को लेकर के अब वो नए तरीके से दुनिया के बारे में सोचने भी लगी है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपको कोल्ड वार के बारे में मालूम है, कोल्ड वार के बाद ये पहला इतना बड़ा सैन्य अभ्यास है, पहला सैन्य अभ्यास है, यह कह लीजिए कि 1981 के बाद उसमें एक सैन्य अभ्यास किया गया था। कोल्ड वार आप जानते हैं, अमेरिका और रशिया दो ब्लॉक में बट गए थे और इनके बीच में मुंहजबानी लड़ाई होती रहती थी, मतलब फ्रंट पे तो युद्ध नहीं हुआ लेकिन उस तरह से खूब युद्ध होता रहता था। इसके कारण क्या है? इसके जो कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि एक तो रूस अब दुनिया को दिखाना चाहता है कि ठीक है, बीच में हम भले ही थोड़े से कमजोर पड़ गए थे लेकिन अब हम फिर से बहुत शक्तिशाली हो गए, हमें कमजोर मत समझो, राइट। चीन के बारे में आप जानते हैं, चीन अब दुनिया की एक शक्ति बन करके उभर रहा है, तो वो भी दुनिया को दिखाना चाहता है, या कह लीजिए खासकर अमेरिका को दिखाना चाहता है कि मुझे कम मत समझो। और आपको मालूम है कि चीन और अमेरिका का बकायदे ट्रेड वार शुरू हो चुका है, व्यापार युद्ध शुरू हो चुका है, यानी कि दोनों में एक प्रकार से कारोबारी तनाव हो गया है। और ये दोनों मिलकर के, यानी कि रूस और चीन, ये कह लीजिए कि दुनिया पर जो अमेरिका का अभी दबदबा है, इनफैक्ट उस दबदबे को तोड़ना चाह रहे हैं, राइट। अब इसका भारत में देखिए कि क्या मामला है, क्योंकि भारत के संदर्भ में हमें सारे इंटरनेशनल रिलेशन को देखना ही चाहिए, और वो आपके बकायदे सिलेबस में क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। अब देखिए कि चीन और भारत के संबंध, मतलब भारत और पाकिस्तान की तरह तनावपूर्ण तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मित्रतापूर्ण भी नहीं है, कुछ न कुछ मामले बीच में ऐसे हो जाते हैं कि दोनों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और इधर चीन, आपको मालूम है कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में अपना प्रभाव जमा रहा है। दूसरा, हमारे जो पड़ोसी देश है उधर के, देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नेपाल और भूटान खासकर वो अभी ध्यान देने लायक है कि वो चीन की तरफ झुक रहे हैं। इसी तरह का एक सैन्य अभ्यास बिम्स्टेक के माध्यम से, बिम्स्टेक संगठन का हो रहा था जिसमें भारत भी है, तो उसमें नेपाल ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसमें नहीं आऊंगा। और ये कह करके नेपाल ने एक प्रकार से ये घोषित कर दिया कि भैया हमारा झुकाव तो चीन की तरफ है, और इस प्रकार से चीन ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। रणनीतिक दृष्टि से आप देखें तो लगभग यही स्थिति अब धीरे धीरे भूटान की भी हो रही है, वह भी अपना ज्यादा झुकाव चीन की तरफ दिखा रहा है। तो भारत के लिए ये थोड़ा सा चिंतित होने की बात है, ये भारत पर इसका प्रभाव है। और जो भारत के जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, तो शुरू में तो हम एक प्रकार से आगे बढ़कर के जो डिप्लोमेसी है उसमें भाग ले रहे थे और कुछ समय तक ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले करीब 7-8 महीने से मामला गड़बड़ हो रहा है और हम बैकफुट पर आ गए हैं और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कन्फ्यूज सी हो गई है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसकी दिशा क्या है। कभी हम अमेरिका के बड़े निकट आ जाते हैं, कभी हम रूस के बड़े निकट आ जाते हैं, कभी हम चीन को तरजीह देने लगते हैं। तो एक दिशा मिलनी चाहिए जो हमारी विदेश नीति को, वो नहीं मिल पा रही है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो दोस्तों, इस वोस्टोक के माध्यम से मैंने जो वर्ल्ड सिनेरियो है, खासकर दुनिया में स्ट्रेटजी को लेकर के, वार स्ट्रेटजी को लेकर के, इकोनॉमी वार को लेकर के, बस उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। अब मैं आता हूं सीधे ईमेल पर। मित्रों, आज कल जो मुझे मेल मिले हैं उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। बहुत दिनों के बाद मुझे मेल पढ़कर के वास्तव में आत्मिक खुशी हुई, वास्तव में आत्मिक खुशी, ऐसा नहीं कि रोज खुशी नहीं होती है, वास्तव में कि कल जितने मेल आए उसमें से ज्यादातर मेल बड़े अच्छे थे, बड़े प्यारे मेल थे, मतलब उनमें सब्सटेंस था, पढ़ने का मन कर रहा था कि हाँ इनमें कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए आज मैं थोड़ी सी लिस्ट भी जो बताऊंगा दोस्तों के नाम की, वो थोड़ी सी लंबी होगी, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज बहुत से मित्रों के नाम लेने की स्थिति में हूं, तो आप लोगों ने ये अवसर मुझे उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, प्रकाश तिवारी गालिमपुर बिहार से, लक्ष्मण राम जोधपुर राजस्थान से, अभय पवार राजेश कुमार चंडीगढ़ से, मनीषा जयगढ़वी, अभिषेक यार्डी राजकोट गुजरात से, सौरभ पाठक ग्रेटर नोएडा से, शहबाज हुसैन हेतराम प्रजापत, हेमंत रजक गैरतगंज मध्य प्रदेश से, और प्रियंका अहिरे धूलिया महाराष्ट्र से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।